તારીખ 10/2/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 100 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 86
आत्मस्वरूप के प्रति कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, पुरुषार्थ के विषय में विवेचन है।
हाँ जी,
वास्तव में तो एक पोते ही पोते हैं, दूसरे कुछ वस्तु है ही
नहीं।
पुरुषार्थ में क्या होता है? स्वरूप की दृष्टि प्रकट हुई है, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मी जीव के मुखा पुरुषार्थ कैसा चलता है? ये कहकर ऐसा पुरुषार्थ हमारा चले, ऐसी भावना मुमुक्ष को आ सकती है। वास्तव में एक पोते ही पोते हैं, दूसरी वस्तु है ही नहीं। इतना अपना स्वरूप पर वजन है कि दूसरे वस्तु होते हुए भी नहीं के बराबर है। नहीं है का मतलब नहीं के बराबर है, यानी कोई काम की चीज
नहीं।
जगत में अनंत परमाणु अनंत दूसरे जीव होते हुए भी अपने काम के तो कोई नहीं, अपने सुख में कोई काम नहीं आते। कोई परमाणु कोई जीव अपने को सुख दे नहीं सकता। एक मैं ही मैं हूं, मैं ही एक हूं और मैं ही मैं हूं, एक इतना वजन है। ये अंतर्मुख पुरुषार्थ में भाव तो निर्विकल्प है पुरुषार्थ का, लेकिन पुरुषार्थ का निवरण स्वविकल्प शब्द द्वारा किया जाए तो ऐसा है। इसका वाच्य निर्विकल्प है, मैं ही एक हूं, मेरे हिसाब से दूसरी वस्तु है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो
दूसरी वस्तु है ही नहीं।
तो सारे जगत को कैसा उड़ाया है, पूरा जगत को उड़ा दिया कि दूसरी वस्तु ही मेरे लिए नहीं। जीव को स्वयं की अरुचि वश, स्वयं की आत्मा के स्वरूप की अरुचि के वश जगत का संग प्रसंग के बारे में कुतूहल होता है। सारे जगत के पदार्थों जानने के बारे में उसको कुतूहल होता है कि विश्व में सर्वत्र क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है, वो जानने का उनको एक वृत्ति रहती है, कुतूहल रहते हैं, जिसको कुतूहल कहते हैं। बाह्य पदार्थ के प्रति जो कुतूहल है तो उस पदार्थ प्रति की रुचि का द्योतक है, प्रकाशक है, और स्वरूप की अरुचि का प्रकाशक है।
बराबर,
बड़ा नुकसान होता है स्वरूप की अरुचि,
स्वरूप की अरुचि में
नुकसान होता है ना बड़ा,
दर्शन होगा सीधा ही दर्शन होगा, रुचि को दर्शन को के अनुभाग को तोड़ती है, स्वरूप की रुचि दर्शन मोह के अनुभाग को तोड़ती है, और पर रुचि है वो दर्शन मोह को अपने अनुभाग को बढ़ाती है। उपसूक्ष्म क्षायक सम्यक दर्शन में अनुभाग इच्छा है, अनुभाग में फर्क नहीं, वो बात लिया है तीन प्रकार के सम्यक दर्शन कहे उपसूक्ष्म और क्षायक, तो उसमें कर्म की स्थिति और भाव की स्थिति बताई आपने सामने, कि जहाँ दर्शन के परमाणु क्षय हो गए और जो में दर्शन मोह का उत्पाद हुए ऐसी योग्यता का क्षय हो गया हो वहां क्षायिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, और उपशम में वो योग्यता सत्ता में है और परमाणु वहां सत्ता में है, उदय मान नहीं है मिथ्यात्मक है, और तीनों सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण का जो अनुभाग है अनुदय है, अनुदय तो एक सा है, मिथ्यात्व का अनुदय तो एक सा है, उदय तो हो ही नहीं सकता। तो सामने कहते हैं कि जो रस पड़ता है उसमें कोई फर्क नहीं है, अनुभाग एक सा है, प्रकृति भले ही अलग अलग है अनुभाग अलग अलग नहीं है, ऐसा बोल लिया कि चतुर्थ गुण स्थान और छठे सातवें गुण स्थान में जो प्रकृति का विच्छेद है वो ज्यादा नहीं है, सम्यक दर्शन होते ही चतुर्थ गुण स्थान में वह प्रकृति का विच्छेद हो जाता है 41 का, और चतुर्थ गुण स्थान के अंत तक में और दो चार का विच्छेद, चार का विच्छेद हो जाता है, और छठे सातवें में इतना विच्छेद नहीं है लेकिन अनुभव बहुत है, अनुभव का जो रस है वो बहुत है, इसलिए भले ही प्रकृति का विच्छेद में ज्यादा गिनती न हो
अनुभव,
लेकिन अनुभव में बहुत फर्क छठे सातवें निराज को छठे गुण स्थान में सविकल दशा होने के बावजूद भी जो परिणति है एक बिजली का करंट जैसे होती है, सुख का करंट चलता है, शांति का करंट चलता है, वो इतना तेज है कि अंतर्मुहूर्त में उपयोग जो है बाहर गया है वो अंदर आ जाता है, बहुत तगड़ी। चौथे और छठे में ये बहुत बड़ा फर्क है, भले प्रकृति का हिसाब इतना नहीं मिले अनुभाग का तो बहुत ही, दृष्टि का मोक्ष मार्ग में कैसा पुरुषार्थ है कि जगत की रुचि नहीं है, वो तो कहते हैं कि जगत में कोई चीज ही नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए कोई चीज नहीं, इसलिए दूसरे किसी दूसरा किसी भी चीज में उनको रस नहीं आता, उपयोग थोड़ा चलता है चारित्र मोह, अस्थिरता भी पैदा होती है, और जिस काल में जैसे होने वाले परिणाम हैं वो हो जाते हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। होने वाले हो जाते हैं लेकिन
वो मैं नहीं हूं।
मैं नहीं लिया है सुगाने जी ने प्रश्न किया है कि आप ऐसे क्यों क्या कहते हो, तो होने वाले हो जाते हैं। गुरु स्थान अनुसार अपनी मर्यादा में होते हैं ऐसे लोग, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? तो एक तो परिणाम पर एकत्व बहुत है जीव का, और फिर भूमिका को पकड़े, मेरी ये भूमिका है तो इस बार मेरा परिणाम नहीं जाना, ऐसा ही परिणाम मैं रखूं, उतनी मर्यादा में करूं, इससे ज्यादा नहीं हो
तो परिणाम में आ गया।
ये तो गुण स्थान में वितरागता जितनी आ हुई, उस वितरागता के वश राग की मर्यादा स्वयं हो ही जाती है, वो दर्शाया है कि हो ही जाती है अपने अपने गुण स्थान में चौथे पांचवें छठे। लेकिन भूमिका अनुसार परिणाम करूं वो बात नहीं है, वो तो इतने इसके पीछे परिणाम के पीछे बहते ही नहीं। होने वाला हो मर्यादित ही होगा इसका ज्ञान है, जितनी वितरागता प्रकट हुई है उसकी मर्यादा में ही वो चलेगा, मर्यादा बार जा ही नहीं सकता, जाना चाहे वो सवाल ही नहीं, न चाहता है न जा सकता है। लेकिन तर्क करेगा अगर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी राग तीव्र करने की शक्ति खत्म हो गई है। जैसे कोई आर्यजन को कहे कि तुम किसी को मार डालो, खून कर दो, तुमको हम पैसा देंगे,
नहीं
तो भी हमको तो पैसा ऐसा नहीं चाहिए, हम ऐसा खून खराबा करके पैसा ले नहीं सकते, ऐसा काम कर ही नहीं सकते,
नहीं सकते
चाहे कोई कितने भी पैसे दे, ऐसे हथियार मारो ऐसा नहीं है कोई किसी को जहर खिला दो, ये कर दो वो कर दो, ये हमारे से नहीं हो, इतना लाभ मिलता है कि भाई लाभ मिलता है लेकिन वो हमसे हो ही नहीं सकता। ऐसे क्रूर परिणाम करने की योग्यता जिसकी नहीं है वो कर नहीं सकते। वैसे चतुर्थ पंचम छठवें गुण स्थान में राग करने की शक्ति जो चली गई, योग्यता चली गई, वो राग वो कैसे कर सकेगा, नहीं करेगा। फिर बाद में जो अपनी मर्यादा हो गई उसमें जो होने वाले वो होते हैं, उस पर वजन नहीं देते। इसलिए कहते हैं मेरे हिसाब से दूसरी वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं, केवली हो या सिद्ध हो तो कहां लेते हैं दूसरे पदार्थ में, समर्थ से समर्थ दृष्टांत ले लेते हैं गुरुदेव के बाहर में दूसरे पदार्थ में तो दूसरे केवली भी हैं, अरिहंत भी है, अभी बीच तो विद्यमान विहरमान तीर्थंकर है एक साथ, यहाँ इस क्षेत्र में तो क्रम से 24 ही होते हैं, इससे ज्यादा एक अवसर पीने काल में नहीं होते, और वहां तो हमेशा 20 से ज्यादा, 20 और 20 से ज्यादा रहते हैं, और उनके निमित्त से हुए जो केवली हो तो लाखों हो सकते हैं, लाखों केवली होते रहते हैं। सिद्धालय में 6 महीने में 608 जाते हैं लेकिन होते रहते हैं वो, तो दूसरे केवली हैं बड़े बड़े, और अनंत सिद्धात्माएं सिद्धालय में हैं, उनके हिसाब से भले हो क्या कहते हैं
उनके हिसाब से भले हो,
मेरे में मुझे इतना रस है कि मुझे दूसरे किसी में भी रस
नहीं
है। तो कैसा जोर है, ये अंतरंग परिणति है जोर की, पुरुषार्थ की, कितना वजन कितना जोर है अपने परमात्मा स्वरूप पर, कितना महान है कि दूसरे केवली और दूसरे अनंत सिद्ध परमात्मा को वो गिनते नहीं, वो दूसरी कोई चीज है ही नहीं मेरे लिए, वो होंगे अपने हिसाब से भले ही हो किंतु मेरे हिसाब से वे नहीं है।
बरोबर,
दिमाग में कठिन पड़े ऐसी बात है, ऐसे ये तो हमारे पूज्य हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि नमो रिहंतान नमो सिद्धान, उनकी पूजा भी करते हैं हमेशा, ये व्यवहार से है, निश्चय से वो बात
नहीं है।
दोनों बात होते हुए भी मुख्यता किसके
किसकी है,
ये सवाल है। दोनों को मुख्य नहीं कर सकते, पर को मुख्य करे तो स्वगुण हो जाता है, स्व को मुख्य करे तो पर गुण हो ही जाता है, दोनों को कोई मुख्य कर नहीं सकता, दोनों को कोई गौण कर नहीं सकता,
बरोबर,
वो बन ही नहीं सकता। जोर से ये बात ली इसलिए नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं, गौण है ऐसा नहीं किया, ये जोर आता है नहीं है मेरे हिसाब से
नहीं है,
नहीं बस नहीं है। ये तो दूसरे पदार्थ की बात हुई, स्वभाव की अपेक्षा से अपने स्वरूप की अपेक्षा से राग भी अपना नहीं है, राग भी
अपना नहीं है,
अपना नहीं है। जैसे शरीर में होने वाला रोग रखने लायक नहीं है, निषेध है, जैसे कैसे भी उसको निकाल देते हैं, वैसे राग एक रोग है जीव की अवस्था का, वो जैसे कैसे भी निकालने लायक है, राग रोग है और वितरागता तंदुरुस्ती है। राग तो
रोग है,
रोग है,
शुभ या शुभ दोनों
दोनों, राग मात्र चाहे किसी का भी हो, भगवान का हो, अपने स्वरूप का हो, राग तो रोग ही है,
रोग ही है,
राग को रोग जानो और रोग को अच्छा जानने वाला राग को, राग के राग को महारोग जानो, ये मिथ्यात्व सहित का राग हो गया
महारोग,
ये राग तो अच्छा है, मैंने ये रोग तो अच्छा है, ये महारोग हो गया। जिसको राग सुहाता है उसको राग का राग है, राग का राग है वो वही महारोग है,
वही संसार में रुलाता है,
ये संसार में अनंत जन्म मरण का यही
कारण है,
राग का राग।
बहुत बढ़िया बात है,
मोक्ष मार्गी धर्मात्मा को राग होता है,
होता है,
और शुभ राग कम हो जाता है, शुभ राग बढ़ जाता है, और मुनि अवस्था में तो अकेला शुभ राग ही रहता है, वितरागता और बढ़ती है, फिर भी वो राग को भी वो निकाल देते हैं, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से वो चलते जाते हैं, जितना पुरुषार्थ चलता है उतना हिसाब में वो
चलते जाते हैं,
चलता जाता है, और वो अनंत अवस्था में वितराग हो जाते हैं। वो रखने लायक नहीं है, रोग है इसलिए रखने लायक नहीं है, भाषा तो ऐसी अचले, चरणानुयोग का शास्त्र हो गए तो ऐसा कहें कि मुनिराज हैं वो 28 मूल गुण का प्रतिपालन करते हैं, और उसमें अतिचार दोष भी नहीं लगाते। अट्ठाईस मूल गुण में अतिचार दोष
नहीं
लगाते, प्रतिपालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं क्या, कि इस राग के नीचे का राग को आने नहीं देते, यही कहने का यहाँ अभिप्राय है। लेकिन इस राग को बढ़ाएं, राग को अच्छा समझें और उसको पोषण करें, तो चतुर्थ गुण स्थान भी नहीं रहता, मिथ्यात्व हो जाता राग का, राग हो जाने से। छठे सातवें का तो सवाल ही
सवाल है।
स्वभाव की अपेक्षा से राग भी अपना नहीं है, देह धन स्त्री पुत्र आदि तो मेरे हैं ही नहीं, कहने की बात नहीं, कहने की बात
नहीं,
नहीं। शरीर में कुछ हो जाए उपेक्षा का विषय, धन ये तो आत्मा हो गया है, आजकल धन तो परमात्मा हो गया, परमेश्वर हो गया, वो मेरे है ही नहीं, ऐसा पुरुषार्थ चलता है। छिड़ा हुआ भेदा हुआ अन्य कोई ले
जाओ,
ऐसा अपना तो छुटा है उसमें, फिर कोई चिंता नहीं, और अपनत्व होते तो चिंता आए बिना रहती नहीं। चिंता किसकी, कि जिसमें अपनत्व करे इसके, जहां अपनत्व नहीं है ममत्व नहीं है वहां चिंता होती
नहीं,
पड़ोसी की कोई करता है चिंता
करता
है, कोई नहीं करता, कब आया कब गया कब खाया कब पिया कब सोया, वो करते होंगे अपने अपने, कोई देखते हैं नहीं है।
ये देह पड़ोसी है, देह धन है वो।
जी पड़ोसी, सब पड़ोसी है, घर वाले घर सामने साथ रहते हैं,
थोड़ी पड़ोसी है,
नहीं अपने जो घर में जो गुण है वो अपने साथ रहते हैं,
अपने
स्वभाव अपने साथ रहते हैं, वो घर के हैं, अपने हैं घर के हैं, मतलब
अपने
अपने हैं,
अनंत गुण की समृद्धि,
अनंत गुण का वस्ती है, अनंत गुण का वास है, और सब जो है स्वभाव के अलावा सब पर ही पर है। उसमें पहले राग ले लिया कि राग अपना नहीं, देह धन स्त्री पुत्र आदि तो मेरे
है
ही नहीं, उसमें मेरे है नहीं और उसमें है ही नहीं, इतना जोर लगाया
तो प्रकट भिन्न है,
प्रकट भिन्न है, नहीं माने तो भी वो भिन्न ही रहेगा, ज्यादा ममत्व करता है थोड़ा ममत्व करता है, ममत्व करता है फिर भी वो अपना हो ही नहीं जाता, ममत्व करने से वो आत्मा का हो ही जाता, ये बात। वो अपने अपने स्वकाल लेकर संयोग में आए हैं, काल पूरा होने से उसका संयोग मिट जाएगा, कोई संयोग हमेशा रहने वाला
नहीं
है ही नहीं, न शरीर परिवार न धन आदि, कोई संयोग हमेशा साथ में रहने वाला
नहीं है,
है ही नहीं। किंतु राग भी मेरा नहीं, वो तो है ही नहीं, ये सब तो मेरे है ही नहीं, किंतु राग भी मेरा
नहीं,
इनके प्रति के परिणाम देह धन स्त्री पुत्र आदि के प्रति के परिणाम है, वो राग रूप है, वो भी मेरे नहीं है। देखो कहां से ये बात ली है, ऐसे ममत्व नहीं करने की बात तो अन्य मत में भी आती है, और संसार में भी लोग जानते हैं कि जितना ममत्व इतना दुख, ममता उतनी दुख होता है, ममता बढ़ती है तो दुख बढ़ता है, ममता घटती है तो दुख घटता है, लेकिन कहां से इस ममता को मिटाया, उपाय क्या है? बात तो कहते हैं लेकिन मिटती नहीं है,
मिटती नहीं है,
ये एक समस्या है। कि इनके प्रति का जो परिणाम है उसमें ज्यादा ममत्व है, मैंने राग में ज्यादा ममत्व है। तो राग का ममत्व है तो राग तो चालू रहेगा, राग कहां तक चालू रहता है? कि राग का ममत्व है वहां तक वो चालू रहता है, ममत्व मिटने से राग स्वयं मिट जाता है। राग का ममत्व मिटने से राग मिटता है, वैसे राग मिटाना चाहे तो भी नहीं मिटता है। विचार बल नहीं है, इसका कारण ये लिया है कि खुद ही खुद की रुचि स्वयं के प्रति नहीं है, निर्दोष स्वभाव के प्रति
नहीं है,
नहीं है। और रुचि राग की और पर की होने से राग का और पर का परिचय जीव ज्यादा करता है, तो उसको परिचय को संग कह रहे हैं। और यही सिद्धांत है कि जिसको जिसकी रुचि है उसको उस ऐसे ही पदार्थों का संग करने का अभिप्राय रहता है, चाहना रहती है, परिणाम रहते हैं और कृतकारित अनुमोदना से वो ऐसे ही पदार्थों के संग में जाता है। इससे क्या होता है कि ऐसी पर रुचि से विचार विवेक का बल खत्म हो जाता है। क्षोभम है तो विचार कर सकता है कि ये भिन्न है, देह धन स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, तो न्याय युक्ति से और प्रकट अनुभव से पता चलता है कि ये चले जाएगा या मैं चले जाऊंगा, कोई हमेश के लिए साथ में रहने वाले
नहीं है,
नहीं है, तो बात जग प्रसिद्ध है, इसमें कोई ना दे ही नहीं सकते, इतनी वो एक मजबूत हकीकत है, हार्ड फैक्ट। लेकिन इसका बल कहां? विचार में जो बात आवे उसका बल कहां से आता है? उसी को कहते हैं श्रद्धा ज्ञान की मैत्री। कि ज्ञान तो होता है, विचार होता है, उसमें ज्ञान तो
होता है,
लेकिन रुचि उसके साथ साथ देती है, तब ये विचार बल है वो मजबूत होता है। विचार में बल तब आता है और फिर कार्य सिद्धि होती है। विचार आवे और बल नहीं होवे तो विचार बेकार जाता है। और कई लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ चलो हमको ज्ञान हुआ, पहला ऐसे नहीं सुना था, पहले ऐसे नहीं समझे थे, अब ये बात समझ में कुछ ठीक लगती है तो ज्ञान तो हुआ। ऐसा ज्ञान नहीं होता है, कि ज्ञान है ही नहीं और ज्ञान ऐसे होता ही नहीं, ये गलती हो जाती है ज्ञान के विषय में।
तो विचार की कंटिन्यूटी, विचार की कंटिन्यूटी, विचार बंद
वो तो विचार कंटिन्यूटी तो वैसे ही रुचि होते ही रह जाती है, जो रुचि होती है उसका ही चिंतन चलता है, उसका ही मनन चलता है, क्योंकि रुचि में तो आवश्यकता है ना, जरूरत लगती है, तो जिसकी जरूरत होवे उसकी रुचि होवे उसका विचार मंथन उसकी कंटिन्यूटी चलेगी, लेकिन ये रुचि पूर्वक चलती है, आवश्यकता और जरूरत वश चलती है। वो पतंगिया का दृष्टांत दिया है ना सुना, कि वो पतंगा को दिया की रुचि है दीपक की, तो विचार नहीं करते कि दीपक तो बहुत सुंदर है, थोड़ी देर तो इसकी सुंदरता का मैं प्रशंसा करते रहूं, विचार करते रहूं, फिर इनके पास जाऊं, बाद में जाऊं, अभी जाऊं, धीरे धीरे जाऊं, जल्दी जोर से जाऊं, ऐसा कोई विचार नहीं करते। उनको इतनी रुचि होती है,
झपट लगा
इस पर, झपट लगाता है, ऐसा रुचि का स्वभाव है कि अपनी आत्मा की रुचि हुई, स्वयं के निर्दोष परमात्मा स्वभाव की रुचि हुई, तो वहां इतने जोर से जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। तो उसके विषय में पढ़ा रहा था, 2400 घंटों चलता रहता है, चिंतन में बेचिंतन चलता ही रहता
है, बराबर है।
अंतर परिणमन होना नहीं होने में यही कारण है, सिर्फ जानकारी पढ़ लेना सुन लेना ही ज्ञान का कारण नहीं होता है, अंतर परिणमन कब होगा, ये उसके साथ श्रद्धा का रुचि का मेल हो गए तब विचार है, उसमें ग्रहण नहीं होती चीज। जैसे आत्मा का विचार होता है तो आत्मा का विचार में चीज आत्मा परोक्ष रहती है, अपनी चीज जो है, और जागृति होती रुचि से जो जागृति आती है तो उसमें स्वयं के स्वभाव को ग्रहण करने का एक प्रयत्न होता है, प्रयास होता है, रुचि के साथ पुरुषार्थ जुड़ जाता है, और जानने के साथ पुरुषार्थ इतना नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो तो परलक्ष्य भी जान सकता है और स्वलक्ष्य ज्ञान करे तो रुचि पैदा होती है, पुरुषार्थ आ जाता है। इसलिए ज्ञान करने में, स्वाध्याय करने में स्वलक्ष्य ज्ञान करना, स्वाध्याय करना ऐसी सूचना है,
बराबर स्वलक्ष्य
ऐसा मार्गदर्शन है, तो मेल पड़ता है सब बात।
श्रद्धा पूजा पाठ यात्रा सब में स्वलक्ष्य
ऐसा है, स्वलक्ष्य तो कहीं भी छोड़ने का कि आज्ञा ही नहीं है,
नहीं है सब जगह की बात क्या है,
सब जगह में किसी भी किसी भी प्रकार का उदय हो,
खाने पीने सोने
कोई भी हो, स्वलक्ष्य रखो
बराबर,
हर जगह से गुण ही गुण होगा और स्वलक्ष्य नहीं तो अवगुण होने बिना रहेगा नहीं, पर लक्ष्य अवगुण का उत्पादक है, स्वलक्ष्य गुण का उत्पादक है, सीधी बात है,
बहुत सीधी बात है।
स्वलक्ष्य में क्या बताना चाहते,
स्वलक्ष्य में आत्मलक्ष्य अपने आप का लक्ष्य, पर्याय अपेक्षा से लेवे तो हित रहित का लक्ष्य, लाभ नुकसान का लक्ष्य रहता है कि नहीं
रहता है,
संसार में क्या रहता है कि मुझे कहीं भी पैसे का नुकसान मत हो, कोई पैसे खर्च करते हैं तो इज्जत बढ़ाते हैं और उसमें वो समझते हैं कि इज्जत बढ़ेगी तो पैसे भी आई जाएंगे, अगर इज्जत नहीं होगी तो पैसा आने की गुंजाइश कम रहती है, तो खर्च करने में भी आने का सवाल हो गया, उसमें
लक्ष्य वही
है, लक्ष्य है उसमें, खर्च करने में भी लक्ष्य तो एक सा ही है और नहीं खर्च करने में भी लक्ष्य तो एक सा ही है, ये लक्ष्य की चीज, लक्ष्य तो बदलता ही नहीं, प्रवृत्ति बदलती है, उल्टी सुलटी होती है, लक्ष्य नहीं बदलता कभी, वैसे आत्मलक्ष्य है उसमें हित अहित का, मेरा हित ही हो मेरा अहित
नहीं हो,
कहीं नहीं हो, ऐसा एक लक्ष्य रहता है, ऐसे स्व लक्ष्य स्वरूप में जो स्वभाव को जहां तक पहचान में नहीं आया, स्वभाव का निर्णय नहीं हुआ, पहचान नहीं हुई, वहां तक हित अहित के विषय में लक्ष्य रहता है, और ऐसे ही लक्ष्य रहते ही उसमें निश्चय हो जाता है, स्वरूप का भाव भाषण वैसे ही होता है, उसी प्रकार से ही होता है, तो भाव भाषण आ जाते तो फिर इसका तो लक्ष्य बन जाता है, वो तो बंधन में आ गया, फिर आत्मस्वरूप आत्म स्वभाव है लक्ष्य पे बंधन में आया
बराबर,
फिर छूटने का सवाल
नहीं।
तो वहां तो स्वलक से ही फिर सब क्रिया चलती है ऐसे।
लक्ष्य करने को तो आता है, जैसे पैसा का लक्ष्य रहता है वहां सब।
लक्ष्य बिना का कोई जीव हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता।
लक्ष्य पलटना है,
इसको पलटा देना है। क्योंकि जहां उन्होंने लाभ नुकसान माना है वो इनके बस की चीज ने कर लिया था, कि अपने बस की चीज होती तो कोई किसी को सड़क पर खड़ा रहना देवे
नहीं।
लेकिन वो तो दूसरे पदार्थ की वाली बात, तो कोई अपने बस की है ही नहीं। फिर भी जो बात दृढ़ हो गई है उसको तोड़ने में थोड़ी ताकत पड़ती है, वो ताकत लगाने के हिसाब से, लगाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ का प्रकरण चलता है। तुम ऐसा झोर करो, ऐसा कहते हैं ये सब बात में क्या कहते हैं कि एक मैं ही मैं हूं, दूसरे कुछ पदार्थ है ही नहीं, ऐसा झोर करो अपने आप में, ये बात है,
पुरुषार्थ की बात है,
पुरुषार्थ की बात है। राग भी मेरा नहीं, ज्ञान स्वरूप अकेला ही हूं, अकेला मैं हूं, मैं ही हूं, मैं तो अकेला ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसा जोर आना चाहिए, ऐसा जोर होना चाहिए अपने आत्मा के ज्ञान स्वरूप में। मात्र आत्मा हूं ही, मैंने इतना ही हूं, ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसा जोर आना चाहिए। ये जो आखिर की बात है वो ही कहने के लिए सारी बात कही। तो उसे ही ना, एक पोते ही पोते हैं, दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा जोर आने के लिए कही, ऐसा जोर होना चाहिए। इसके सामने प्रश्न उठाया किसी ने कि मैं जानने वाला ही हूं, ऐसा जोर आता नहीं। आप कहते हैं कि ऐसा जोर होना चाहिए लेकिन हमें आता
नहीं,
फिर क्या करें,
कैसे
आवे ऐसा जोर,
बताओ।
जैसे मुंह में किसी ने शक्कर रखे और वो कहें कि हम स्वाद कैसे लेने, ऐसा कोई प्रश्न करे तो कहेंगे कि भाई हमें स्वाद नहीं आ रहा है, मुंह में जब चीज रखी फिर भी स्वाद नहीं आ रहा है, तो दो बात इसमें बनती है, शारीरिक और मानसिक। अगर उपयोग कहीं और जगह छोड़ गया तो यहां उपयोग नहीं जाएगा, तो स्वाद का जो अनुभव है वो यहां उपयोग नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। तो ये मानसिक परिस्थिति हो गई। और किसी ने ऐसा कोई तीव्र पदार्थ खा करके मुंह ऐसा बिगाड़ दिया हो, जैसे ये खाते हैं पान पट्टी लोग बहुत खाते हैं, ये तंबाकू बहुत खाते हैं, जैसे कोई ऐसे मुंह में ज्यादा टाइम रखने वाले पदार्थ खाते हैं तो इसका ऐसा हो जाता है कि किसी भी चीज का उनको स्वाद नहीं आ रहा है, अच्छे से अच्छी चीज उसका स्वाद नहीं आ रहा, वो खाने पे खा लेता है थोड़ा बहुत, फिर वो लगा देता है मुंह में तंबाकू पान पट्टी रख लेता है, बस हो गया। तो इसमें ऐसा है कि तुम्हें पुरुषार्थ या ज्ञान का स्वाद नहीं आता है, ज्ञान तेरा स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव ही मैं अकेला हूं, ऐसा लिया नहीं, तो ज्ञान का स्वाद नहीं आता है। राग का तो पता चलता है, ये राग अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कि ज्ञान का स्वाद नहीं आया इसका यही कारण है कि तेरा उपयोग नहीं है, लक्ष्मी है। दूसरा, राग का और राग के विषयभूत पदार्थों में ऐसा रस लिया है, ऐसा व्यसन से सेवित कर लिया है कि इसका स्वाद के आगे उसका ज्ञान का स्वाद आता नहीं, बस खत्म। मैंने पर रुचि से राग का, राग की रुचि से राग का, और राग के विषय भूत पंचेंद्रिय के जो पदार्थ विषय है उनका इतना तीव्र रुचि से स्वाद लेकर के परिणाम को इतना बिगाड़ा है, ज्ञान को इतना मैला किया है कि ज्ञान को स्वयं ज्ञान का ही स्वाद नहीं आता। ये तो मुंह में रखी हुई चीज है, पर्याय है उसका मुख है, जीव का मुख है, तो फिर भी उसमें उसका स्वाद नहीं आता। इसका यही कारण है कि वो पहले से परिस्थिति बिगड़ी हुई है, भले ही बिगड़ी हुई है, ये तो ज्ञान करने की चीज है, समझने की चीज, अब उसमें सुधार हो सकता है। उसमें सुधार नहीं होता ऐसी बात
नहीं है, नहीं।
उसमें भी सुधार हो सकता है,
बहुत सुधार करके चले जाएंगे मोक्ष।
वो करने चाहे, अपन अपना हित करना चाहे तो बिल्कुल
कर सकते,
आसानी से और तेजी से हो सकता है। अहित तो अनंत काल से करता आया, क्योंकि हित करने में अनंत काल नहीं चाहिए कि वो अनंत काल मिले तो हित हो गए। कई लोग ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये मोक्ष की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो ऐसी बातें हैं तो वो तो बहुत भाव में, एक भाव में थोड़ा काम हुए, दूसरे भाव में और थोड़ा काम हुए, बहुत भाव में, ज्यादा भाव में आगे जाकर के फिर ये अरिहंत सिद्ध होते हैं, कहीं भाव भाव उसमें भाव लग जाते हैं, ऐसी बात
नहीं है।
नहीं है, भरत महाराज के निर्वाणु पुत्र थे, निगोद में से ही आए थे,
निगोद में से आए,
कौन से भाव में आगे काम किया, संस्कार भी एक नहीं लिए थे, अगले भाव में कोई संस्कार
नहीं लिए थे,
अगले भाव तक संस्कार नहीं लिए थे, और भगवान ऋषभदेव के समो शरण में उनको सब मिल गया, चरम शरीर थे, मोक्ष में चले गए, वहीं मिथ्यात् छोड़े अनादि का समीर दर्शन हुआ, निपणा हुआ, केवल ज्ञान करके मोक्ष में चले गए। ऐसी नहीं बात है कि बहुत भाव मिले, काम करने के लिए इतना समय चाहिए, वो बात नहीं है। आत्मा में इतनी ताकत है कि अनंत काल का जो विपरीत संस्कार है, विपरीत ग्रहण किया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। तेम विभाव अनादिनो ज्ञान छता दूर खाए, अंधकार अनादि का प्रकाश होने के वक्त इसी काल में चला जाता है। ज्यादा टाइम का अंधकार हो गए उसको निकालने में ज्यादा समय लगे, वो बात नहीं, दीपक जलते ही खत्म। उसमें पुरुषार्थ के प्रेरणा है, उत्तर देते हैं कि जोर खुद पोते नहीं करता, स्वयं खुद जोर नहीं करता, अनंत पुरुषार्थ का पिंड है, पुरुषार्थ की अनंत शक्ति भरी हुई है, जोर कहीं बाहर से आता
नहीं,
कोई और जगह से लाने की चीज नहीं,
पराधीन
नहीं, आता है तो अंदर में से
आता है, भंडार भरा
है, भंडार भरा है, अनंत वीर्य का भंडार भरा है, बेहद कोई हद नहीं, इतना है। जोर स्वयं नहीं करता इसलिए नहीं आता, क्यों नहीं आता ऐसा पूछा है कि नहीं करता इसलिए नहीं आता, तू स्वाद नहीं लेता इसलिए स्वाद नहीं आता, स्वाद लेता तो स्वाद आता है, बस उतनी बात है। मुंह में रखी हुई चीज को गले कैसे उतारे, कोई ये प्रश्न करे कि खाना कैसे खाना, चलो ये थाली में आई चीज मुंह में तो रखे, वो तो हाथ से रखे, अब मुंह में तो कोई हाथ नहीं है, थाली में से तो मुंह में रखे, लेकिन मुंह वाली चीज भीतर में कैसे उतारे? इसके लिए कोई क्लास होते हैं, वर्ग होते हैं, कोई शिक्षण होता है कि ये तो भूख लगी हो तो सहज हो जाता है क्या? तेरा ये प्रश्न सूचित करता है कि मुख में आई हुई चीज गले कैसे उतारे, इसका मतलब यह हो कि तुझे भूख नहीं लगी।
भूख नहीं लगी
क्या?
भूख नहीं लगी।
तुझे भूख
नहीं लगी?
भूख लगी है तो कैसे गले उतारे वो बात रहती नहीं। ऐसे कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न ही सूचित करता है कि उनको इस विषय में कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई इसके इस विषय में रुचि नहीं जमी हुई है, और वो स्वलक से बात समझता नहीं। वरना ये इस विषय का जो प्रयोग है, ये प्रयोग का अभ्यास ऐसा है कि 100 में से 99 प्रश्न तो अपने आप ही खत्म होते हैं। कितने?
99।
100 में से 99 खत्म। पूछना नहीं पड़ता ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये बात नहीं रहती। ऐसी चीज है। ये प्रश्न बहुत चलता है अपने यहाँ कि तत्व ज्ञान की चर्चा बहुत चलती है, अपने लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, वक्ता भी हैं, सुनते हैं, पंडित लोग भी, चर्चा भी आपस में चलती है, फिर ये प्रश्न करते हैं कि कुछ शास्त्र कैसे कर सकते। ये प्रश्न एक बड़ी समस्या जैसे हो ऐसा हो गया है, इसका समाधान है। तो जोर स्वयं करता नहीं इसलिए होता नहीं। अब कहते हैं कि देख बाहर के संसार के प्रसंगों में कितने अहम सर्वोत्साह होता है, ये रुचि गिरी। पुरुषार्थ को तुम बाहर में नहीं देख सकता हो, लेकिन उसकी प्रीस्टेज है उत्साह होश, ये इसके आगे वाली चीज है। पहले रुचि होती है, बाद में पुरुषार्थ जगता है। तो बाहर के प्रसंग में, संसार के प्रसंग में कितना उत्साह आता है, कितनी होश होती है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रसंग हो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। क्या?
अच्छे से अच्छा होना चाहिए।
अभिप्राय में तो ऐसा रहता है कि किसी और के वहां नहीं हो ऐसा अच्छा होना
चाहिए,
चाहिए। ऐसा अभिप्राय रहता है कि कहाँ से उत्साह आया, इतनी होश कहाँ से आई?
उनकी पड़ी है,
उनकी रुचि पड़ी है। तो वहां कोई बाहर से सीखने को नहीं जाता कि हम कैसा करें, ये ऐसा भाव हम कैसे करें, वो के सीखने की चीज है। बाहर के संसार के प्रसंगों में कितनी हास और उत्साह, हौसे कहते हैं ना हिंदी में, हौसला बोलते हैं, उत्साह आते हैं। ऐसे अंदर में अपने स्वभाव की हौस और उत्साह आना चाहिए। मैंने उल्लासित वीर्यवान तत्व तत्व पाने का प्रमुख अधिकारी है, पात्रता के विषय में बात लिया है।
उल्लासित वीर्यवान,
उल्लासित वीर्यवान जिसको उत्साह होता है अपना निर्दोष स्वभाव को ग्रहण करके निर्दोष होने का, जिसको उत्साह है वो तत्व पाने का प्रमुख अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है। ऐसा लिया है, ये पात्रता का चिन्ह लिया है, लक्षण लिया है। ऐसे अंदर में अपने स्वभाव की हौस और उत्साह आना चाहिए। तो मुझे मेरा काम करना है, यह मनुष्य भव इसलिए ही मुझे मिला है, ऐसा मुझे दिखता है, मेरे भाव में विचार में ऐसा दिखता है कि ये मनुष्य भव इसलिए मुझे मिला है कि अनंत काल का हित में कर सकूं करना, और उसी में मुझे अग्रसर होना है, इसी कार्य को मुझे मुख्य करना है। बाकी और जितने भी संसार के काम हैं अपने काल में होते रहेंगे, जैसा भी हो, हमें इसमें कोई इतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी हो, होने वाला होते रहेगा, इसको हम मुख्य करके इसकी सावधानी में रहें। तो ये जागृति और सावधानी आती है, और उसमें ये भी आया कि ग्रहण करने में ऐसी बात है, विचार करने में इतनी बात नहीं है, ग्रहण करने में इतनी बात है। ग्रहण करने से वस्तु प्रत्यक्ष होती है और विचार करने में वस्तु परोक्ष रह जाती
है। जय हो, जय हो।